प्यारी अमूलूई तपस्वाहूरम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमुखे मंगलम कुंडकुंतात्यो जैन धर्म मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम सदानं सर्व धर्मानां जैनं जयतु शाश्वतम् जैनं जयतु शाश्वतम् जैनं जयतु शाश्वतम् तीन भुवन में सार दीप राख विज्ञान का शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रयोग संभाव की आठ मत के अंदर हमने लास्ट टाइम धन मत के बारे में चर्चा करी थी और उस पर
अनुभव जी आपका आपकी आवाज जरा ऊंची हो सकती है।
हाँ हाँ दो सेकंड हेलो।
हाँ हाँ जी
नहीं आती इतनी जोरदार नहीं आती है
थोड़ा थोड़ी 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 कम सुनाई देती है।
आई थिंक थोड़ी देर स्टार्ट करते हैं तो शायद आएगी। अभी थोड़ी बहुत करी आपको
अच्छी है।
मेरा तो फुल वॉल्यूम है। नहीं मेरा तो वॉल्यूम फुल मैंने कर दिया है।
ठीक है दो तीन मिनट देखते हैं नहीं आती तो फिर कॉन्टेक्ट करते हैं।
अच्छा अच्छा
सभी को ऐसी आ रही है क्या? मुझे तो बराबर आ रही है अनुभव जी की आवाज।
अब अच्छी आ रही है ठीक आ रही है।
हमारी छेती आवे छे એટલે અનુભવ જી ની નથી આવતી પણ અમારી બાજુ મેં તો મારી બાજુ વોલ્યુમ રહી છે
રાઈટ મેં મારું વોલ્યુમ એકદમ ફૂલ કર્યું પછી હું બોલી
ચલેગા અનુભવ જી હા શરૂ કરતે
ઓકે હા હા मत की हमने बात करी थी और उसमें हमने देखा था कर्मों में ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसके उदय में हमको ये बाहरी सहयोग प्राप्त होते हो। इनको उपचार से नो कर्म कहते हैं क्योंकि हमारे साता और असाता के वेदन में निमित्त होते हैं। बाकी बाहर की कोई भी वस्तु के लिए वेदनीय कर्म साता वेद्य या साता वेद्य पुण्य या पाप ये कोई भी निमित्त मतलब ये वाले कर्म का उदय हमारी जीव विपाकी परिणाम जीव विपाकी का उदय होता है कि हमारे परिणामों पर काम करता है ना कि बाहर के पदार्थों पर। तो इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन लास्ट टाइम क्योंकि हमारा डिस्कशन हुआ था इस पर तो किसी ने कुछ सोचा हो और फिर किसके पास क्वेश्चन हो
आपने कहा ना कि गौमटसार में है।
हाँ।
तो गौमटसार में मैंने अभी किसी ने मुझे भेजा अभी ईमेल से तो उसे चैप्टर में मिल जाएगा
એટલે એમાં ક્વેશ્ચન નંબર હતો 16મો ક્વેશ્ચન કેમ કાય
અમાર ક્વેશ્ચન છે
હા હા તમે વાંચ્યો એટલે એમાં ઇમેલમાં લખ્યું છે કયો ક્વેશ્ચન હતો
મેં થેન્ક યુ યા આઈ રીડ ઇટ
ઠીક છે સો ઉત્સા કન્ફ્યુઝન એ હે બસ કે આઠ कर्म है और जीव आठ कर्मों से पूरा बंधा हुआ है और प्रति समय उसको कर्मों का आश्रय हो रहा है और प्रति समय कर्म उसके उदय में आके खिर भी रहे हैं। इन आठ कर्मों के निमित्त से जीव अपने परिणाम और बाहर का जो कुछ भी उसको शरीर आदि का मनना ये सारे काम उसके आठ कर्मों के निमित्त से हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी कार्य होगा तो वह पांच समवाय पूर्वक होगा और पांच समवाय में चार तो हमारे खुद के हैं जैसे कि स्वभाव पुरुषार्थ भविष्यता काल लब्धि। लेकिन जो पांचवा निमित्त है वह निमित्त पर द्रव्य है वह स्वद्रव्य नहीं है निमित्त यानी कि दूसरा द्रव्य करेक्ट तो
हाँ।
बट उसका भी होना आवश्यक है
क्योंकि कार्य के लिए
पांच समय होंगे तो कार्य होगा
बराबर।
तो बाहर का निमित्त जब भी कोई कार्य होगा कोई ना कोई द्रव्य तो वहाँ पर मौजूद रहेगा जब वह द्रव्य मौजूद रहेगा और उस समय जो कुछ भी हमारा परिणाम है हम उस द्रव्य पर हमारे परिणाम भी जो व्यवहार में है वह आरोप कर देगा कि अच्छा शायद इसमें के कारण इस द्रव्य के कारण ये वाला कार्य हुआ बट वो रियलिटी नहीं है वो कार्य हुआ क्योंकि हमारी उस समय वैसी योग्यता थी और वो जब उस समय वहाँ प्रेजेंट था उपलब्ध था तो उस पर उसका आरोप कर दिया गया। ऐसे सारी चीजों का आना जाना वो सब जब तक हम नहीं जाने तब तक तो पता ही नहीं पड़ता बच्चे को नहीं पता है कि उसके मम्मी पापा के पास कितने अकाउंट में बैलेंस है कितने रुपए हैं बच्चे को नहीं पता है कि उसके मम्मी पापा कितने रिच है वो समझते ही नहीं है कि मनी क्या होती है राइट बट ही हैज इट वो है रिच राइट उसको नहीं पता है लेकिन वो रिच है करेक्ट तो ये वाली चीज जब तक आप उसका वेदन नहीं करते तब तक वो संयोग में भी रहे तो भी आपको कुछ पता नहीं है तो मैं पुण्य का उदय पाप का उदय साता का उदय असाता का उदय कैसे बन जाएगा जब तक जीव उसमें स्वयं के परिणाम को ना जोड़े। तो इसके ऊपर जब हमारे किसी कर्म के उदय में हमको वस्तु प्राप्त ही नहीं हुई हमारे पास जो कुछ भी वस्तु है वह किसी भी कर्म के उदय में नहीं है लेकिन यदि हमारा मिथ्यात्व तीव्र है और हम उसमें अपनापन करके अहंकार करते हैं कि ये देखो ये है मेरा और मैं कितना सही मैं कितना लकी मैं कितना मेहनत करी मैंने इसको जोड़ा तो ये धन का मद कि देखो मैं इतना बड़ा आदमी इतनी मेहनत करके मैंने ये किया ये और ऊपर की जाति का मिथ्यात्व हो गया क्योंकि एक तो आपने उसको लाया नहीं वो अपनी योग्यता से अपने काल में अपने अविधि के लिए आई अपने रिलेशन के लिए आई और हम उसमें भी मानने लगे कि देखो ये मेरा है और मैंने इसको लाया तो ये मिथ्यात्व का सूचक है और क्योंकि सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व नहीं होता इसलिए उसको इस तरीके का मत भी नहीं होता। ये वाली चीज सारी चीज के लिए हर एक वस्तु जो भी परद्रव्य है उसमें तीन चीजें रहेंगी कॉमन जो भी परद्रव्य है सबसे पहला उसका आना जब उसका अराइवल होगा दैट वुड बी आप उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते कब आएगा तो वो आपके बुलाने पर नहीं आता अपने टाइम पर आता है आप अपना रिजर्वेशन आज करा सकते हो फ्लाइट का राइट यू कैन बुक अ फ्लाइट टिकट राइट आज आप बुक करोगे और जिस टाइम की फ्लाइट है आप उस टाइम एयरपोर्ट पर पहुंच भी जाओ बट वो फ्लाइट टाइम पर होगी या डिलेड होगी ये आप बुकिंग कर लो या कहीं पहुंच जाओ यू कैन नॉट एवर डिसाइड दैट वो फ्लाइट को ही डिसाइड करना है
करेक्ट
राइट वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो यू कैन प्लान फॉर समथिंग अराइवल आप सोच सकते हो कि यार मैं ये कर रहा हूँ चलो मेरे को इतना रिटर्न इसको मिल जाएगा बट आप जस्ट होप कर सकते हो तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट रूल इज जो परिद्रव्य है उसका अराइवल इज नॉट उसका अराइवल का डिसीजन आपके हाथ में नहीं है उसको आना है वो अपने टाइम पर आएगा राइट डॉक्टर से बच्चे का जब पैदा होना हो तो डॉक्टर एवरेज डेट बताते हैं एक्सपेक्टेड डेट ये है बट किस डेट पर आएगा ही बच्चा तो कभी प्रीमैच्योर बेबी हो जाते हैं कभी ऑन डेट होते हैं कभी आफ्टर डेट हो जाते हैं तो सी वी ऑल वी जस्ट नो के ना ऐसा ऐसा हो जाएगा, बट उसका एग्जैक्ट कोई नहीं बताता। आपको शॉप को खोल देंगे, आपको बता देंगे हाँ भाई देखते ये बिजनेस है, बट नो बडी विल टेल यू कि इतने बजे तुम्हारे पास ये वाला क्लाइंट आएगा। हम क्या करते हैं, हम शॉप पर बैठ जाते हैं, बस जाकर एक स्टोर है, स्टोर पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आदमी क्या करता है।
મારો તો સેલ ફોન છે, ઓલો નથી, રેગ્યુલર નથી,
ના પણ તો એટલે છે ને કે સ્ટેટિક નો અવાજ બહુ આવે છે, એટલે તમે મ્યુટ કરી નાખો તો તમારો, એટલે બોલવું હોય ત્યારે પછી અનમ્યુટ કરીને બોલજો,
હમકો ક્યાં ચાહીએ, હમકો ચાહીએ કે બહુ સારે મુક્ષુ લોકો એક્ટિંગ કરીને કે લીએ, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग सिटीज में जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे, हम उसको इनवाइट देंगे सबको, करेक्ट। सिमिलरली ऐसे मैं एक शॉप ओपन कर रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ बहुत सारे कस्टमर्स आए, मैं क्या करूंगा, मैं मैगजीन्स में मैं होर्डिंग्स लगवाऊंगा, एडवर्टीजमेंट दूंगा, मैं टीवी में एडवर्टीजमेंट देखूंगा। फिर हम पंचकला के लिए हर जगह गए, हमने पत्रिका भी भेजी, हमने सबको बता दिया, हम बार बार फोन भी कर रहे हैं। सिमिलरली फॉर शादी, शादी में सब लोग आए तो हम क्या कर सकते हैं, हम कार्ड छपवा सकते हैं, हम सबको दे सकते हैं, हम सबको फोन कर सकते हैं। हमारा हर एक चीज के लिए प्रोसीजर है सेम। कस्टमर को बुलाने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मंदिर में बुलाने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, शादी में बुलाने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, राइट। बट देट इज योर लिमिटेशन। आप कार्ड दे सकते हो, आप फोन कर सकते हो, आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, आप पत्रिका दे सकते हो, बट लोग आएंगे कि नहीं आएंगे यू कैन नॉट गारंटी दैट। आपके पास आखिरी दिन तक उसकी कोई गारंटी नहीं है। जिसने कंफर्मेशन नहीं दिया है शायद वो भी कल आ जाए, और जिसने दिया है शायद वो उस दिन बीमार पड़ जाए और वो निकल नहीं पाए, उसकी ट्रेन छूट जाए या वो नहीं आ पाए, करेक्ट। और जब किसी वर्क रबी की बात है तो उसका आना इज ऑलवेज undecided, वो कब आएगा, that totally depends on that drug and not on you. तो ऐसे यदि पैसे आने हैं, ऐसे यदि हमारी फैमिली में कोई मेंबर आना है, ऐसे यदि मेरे पास कोई वॉच आनी है, एक सिंपल पेन आना है, एक नोटबुक आनी है, इट वुड ऑलवेज बी undecided when it will come. वो आपके बुलाने से नहीं आता, आप महीनों प्लानिंग कर सकते हो उस चीज की। आप देखिए ना, जब भी कोई शादी का प्रसंग होता है या कुछ भी होता है तो क्या करते हैं, हम सर्च ही तो करते हैं, हमारे ढूंढने से थोड़ी मिलता है, फिर अचानक से किसी दिन मिल जाता है, कभी मिलता भी नहीं, कभी एक दो साल हो जाते हैं ढूंढते ढूंढते। ऐसे ही हम देखे कि हम बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, तो हम तो बहुत ट्राई करते हैं, बच्चा तैयार भी करते हैं, इतनी सारी जगह जाते हैं, राइट। हम कोई कार देखने के लिए जाते हैं, इतने शोरूम्स में एक दो नहीं देखे, तो पूरी डिटेलिंग लेते हैं। सो एवरीथिंग, हमको लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट वो काम अपने टाइम पर हो रहा है, तो वो फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल, पहला रूल है कि उसका अराइवल इज नॉट आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आपने कितना एडवर्टाइजमेंट किया, आपने कितने सारे फोन किए, आपके बुलाने से एडवर्टाइजमेंट करने से कोई भी वहां पर नहीं आ रहा है, आपकी मेहनत से कुछ भी नहीं आया है आपके आसपास, ये पहला रूल है, वो अपने टाइम पर आया है, ठीक है।
हमने बुलाया और तो लोग आए, वो हमारी मिथ्या मान्यता है।
हाँ, वो क्योंकि आपके पास
उपादान
उदय ही नहीं है, आपके पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे आप उसको बुला पाओ, आपके पास कोई प्रामाणिक निमित्त नहीं है। देखिए, आपका नॉलेज उस पर आप कंट्रोल कर सकते हो। देखिए, मैं चाहूँ तो मैं आज ये कर सकता हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं क्रोध पर कंट्रोल कर दूँ, क्योंकि क्रोध उसको कंट्रोल करना मेरे हाथ की बात है, क्योंकि उसके संबंधी निमित्त भी यदि मैं शास्त्रों का अध्ययन करूंगा मैं प्रेम पूर्वक बोलना शुरू करूंगा। ये सबसे क्रोध के हम कर्म को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं, ठीक है। मुझको यदि मुझे चाहिए कि मुझे सम्मित्व लेना है, तो हाँ मिथ्यात्व नाम का कर्म जीव विपत्ति है, और मैं यदि अपने परिणामों को सुधारूं, अपनी श्रद्धा को सम्मित करूं, तो मैं उसको कंप्लीट कर सकता हूँ। मुझे चाहिए कि मैं अपने ज्ञान को बढ़ाऊं, हाँ मैं दूसरों से ज्ञान छिपाना बंद कर दूं, मैं सबको पढ़ाना शुरू कर दूं, मैं ज्ञान दान में बहुत सहयोग करूं, इस सबसे मेरा ध्यान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि तत्संबंधी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान जीव की है धरोहर। तो चार घातिया कर्मों के उदयों को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं अपने परिणामों से, क्योंकि हमको पता है मुझे नरक में नहीं जाना, तो मैं बहुत आरम परिग्रह के लालच को, लोभ को, लिप्तता को छोड़ दूं, तो मैं वो गति को कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे लंबी आयु चाहिए, मैं अन्य जीवों को परेशान करना छोड़ दूं, मैं ऐसे आत्मघाती चीजों का प्रयोग करना छोड़ दूं, मैं इसे सिगरेट, शराब, ये सब चीजें ना लूं, मैं सबकी मदद करूं, इन सब से मैं आयु कर्म आदि का भी विचार कर सकता हूँ। इन सब की नैमित्तिक क्रियाएं मुझे पता है। अब प्रॉब्लम है, धन के साथ प्रॉब्लम ये है कि तत्संबंधी हमारे पास कोई कर्म नहीं है। हमें लगता है दान देने से धर्म आता है, नहीं, दान देने से क्या होता, दान देने से धन नहीं आता। दान देने का क्या गणित है, सिंपल मैथमेटिक्स क्या है, आपने दान दिया तो हम जितना दान देंगे उतना पैसा आएगा ना, कि नहीं ऐसा नहीं है। दान देने से क्या होता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग पैसे होते हैं या कोई भी वस्तु होती है, खाना होता है, दवाई होती है, कुछ भी होता है, जब आप उसका दान देते हो तो आप उसके चार्ज करते हो, कैट यू चार्ज फॉर इट, नहीं तो दान है, चैरिटी है, करेक्ट? हेलो, राइट। हम उसका दान देते हैं तो हम कुछ चार्ज नहीं करते, चार्ज नहीं करते। देखो आप अपनी चीज को किसी दूसरे को विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट एनी गिव एंड टेक, आप कुछ ले नहीं रहे हो उससे, आप उसको देते हो, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को संतोष के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि ठीक है मेरे पास ये भी नहीं रहेगा तो भी मैं खुश होऊंगा, करेक्ट? आप उस वस्तु के बिना रहने की प्रैक्टिस करो संतोष को। और सातवेदनी क्या है कि आपके पास संतोष हो, आपके पास कुछ हो या नहीं हो, आपको खुश रहना आना चाहिए। तो दान हमको वैसे कहा देता है, तो ऐसा कहा जाता है कि दान से हमको पैसा आता है, पैसा नहीं आता, दान देने से हमारे पास संतोष आता है, और कल को पैसा भी आएगा तो भी संतोष रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि तो हमें दे देना है, करेक्ट? तो पैसे देने से खुश नहीं होते, और दान देने से पैसा भी नहीं आता, पैसा तो अपनी योग्यता से आएगा, पैसे को देने वाला कोई कर्म नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े दानी हुए, सबके पास पैसा आता क्या हो, ऐसा नहीं है, करेक्ट? तो ये दान देने से पैसा आएगा, ये ट्रांजेक्शन बहुत बड़े उपचार का कथन है। और सही बात ये है कि दान देना वह संतोषी व्यक्ति को होता है जो कि खुद में एकदम संतुष्ट है, और जो संतोषी है उसके हमेशा पुण्योदय है, उसको चीजें चाहिए ही नहीं, वो पर ब्रह्म से अपनी साता नहीं देखता। ठीक है, तो बाहर का जो कुछ भी है
तो पुण्य का
बुलाना, हाँ हाँ बताइए,
पुण्य कैसे आएगा, आप कहते हैं
पैसा, पता है वही तो बोल रहा हूँ, आपको पता है पुण्योदय में क्या होता है, पुण्योदय की क्रियाओं में जब आगम में लिखा तो उसमें लिखा पुण्योदय में जीव दान देता है, तो पैसा आना पुण्य का उदय नहीं कहा जाता, दान देना पुण्य का उदय कहलाता है। जब अंतराय नहीं, आपको पता पांच प्रकार के अंतराय में कौन कौन से, दान, लाभ, भोग, उपभोग, पहला अंतराय दान का है, दान अंतराय, किसी का बहुत पुण्य का उदय हो तो वह दान दे पाता है, किसी का बहुत पुण्य का उदय हो तो वह जिंदगी के दर्शन करता है, किसी का बहुत पुण्य का उदय हो तो उसको जिनवानी पुण्य पाती है, किसी का बहुत पुण्य का उदय हो तो उसको भगवान की पूजन करने के परिणाम होते हैं, तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करने के परिणाम होते हैं, किसी का बहुत पुण्य का उदय हो तो उसको किसी मुनिराज के दर्शन होते हैं, पुण्य का उदय ये कहलाता है ना कि बहुत पुण्य का उदय हो तो बहुत बड़े क्रूज में वो पापी करने जाता है, बहुत बड़ा पुण्य का उदय हो तो उसकी एकदम एक्स्ट्रा इवेंट्स में उसको जाने मिलता है। ये सब पुण्य के उदय नहीं है। जिनागम पापानुबंधी पुण्य को तो पुण्य में काउंट करता ही नहीं है। जिस पुण्य के उदय में जिस पाप के गड्ढे में गिरता हो उसको पुण्य कैसे कहते? तो उसको पावर दोहा नामक ग्रंथ में मुनि राम सिंह ने बोला कि मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, मुझे पाप उदय अच्छा है, मुझे नरक की वेदना अच्छी है, लेकिन स्वर्गों का वह पुण्य नहीं चाहिए जो मुझे एक इसलिए बनाता हो।
यहाँ मुझे कंफ्यूजन होती है थोड़ी सी अनुभव जी, क्योंकि वो पैसा आना उसको हमने पुण्य का उदय नहीं बोला। अभी जिनवाणी
उसको बोला जाएगा पुण्य का उदय, नो कर्म की अपेक्षा। लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं, हम प्रॉपर वस्तु व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जिनागम में तो पूरी जितनी भी बात की जाएगी हम नौ कर्म की अपेक्षा ही बात करेंगे। उसके बहुत पाप का उदय था तो उसके बहुत गरीबी थी, उसके इतना पुण्य का उदय था उसको पैसे ही नहीं, वो कुछ भी करता था। जैसे धन्य कुमार का अकृत पुण्य का जीव था, वो वहां पर उसको उसने सोने की अशर्तियां दी, वो जलकर काली हो गई और कोयला बन गई। तो वो वाली बातें तो हम जब करेंगे तो नैमित्तिक की अपेक्षा, हम उसको पुण्य पाप ही बोलेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं अब एकदम जो एक्चुअली साइंस क्या है इस पर। देखिए, जब मैं बोलूंगा कि ये पानी का ग्लास है,
वो तो समझ में आया कि अगर पैसा आवे कि वो हाउ वी फील इट, कि इफ वी फील इट गुड तो हमारा साथ आवे, हम क्या है कि उसको बोलेंगे कि हमारा साथ आवे का कर्म, और ऐसा इफ यू फील बैड अबाउट इट तो असाता वेद, तो वो तो सारी चीजें में अभी जिनवाणी भी अगर मिले
नहीं,
जिसको अगर उसमें रुचि ही नहीं है तो वो तो बोलेगा कि ये क्या मुझको, तो फिर उसको तो असाता ही होगा ना।
देखिए दो चीजें हैं ठीक है। एक तो ज्ञान वाहिनी कर्म का होता है हमारे पास, ठीक है।
किसको?
ज्ञान वाहिनी कर्म
दोबारा रिपीट कीजिए।
ज्ञानवर्णी कर्म का उदय है, ठीक है।
okay.
तो ज्ञानवर्णी कर्म के उदय के कारण क्या हुआ?
ज्ञान का क्षरण
होगा, मैं सदमस्त हूँ, मेरे पास अल्प ज्ञान है, बराबर, ठीक है। हेलो,
क्या कहा आपने? क्या होगा ज्ञानवर्णी कर्म के उदय से?
मेरे पास अभी ज्ञानवर्णी कर्म का होते है तो क्या होगा? मेरे पास किताबें कम होंगी, मेरे पास घर पर लाइट नहीं रहेगी, क्या होगा? ज्ञानवर्णी कर्म के उदय के कारण क्या होता है?
मेरी तबीयत नहीं ठीक होगी, मेरा ब्रेन नहीं चलेगा।
नहीं, ज्ञानवर्णी कर्म के उदय के कारण ये सब नहीं होगा। ज्ञानवर्णी कर्म के उदय के कारण
क्योंकि वो तो फिजिकल हो गया। अच्छा, शरीर की बात मैंने की। हाँ, बराबर।
हाँ, ज्ञानवर्णी कर्म का उदय मतलब क्या कि सीधी बात है।
आपको किताबें कम होगी।
हाँ, यानी किताबें कम हो या ज्यादा हो उससे मेरे ज्ञान का क्या लेना देना?
हाँ,
बराबर, ठीक है।
मगर जो
ठीक है,
ओके।
हाँ बताइए, हाँ बताइए, क्या कैसे में
नहीं, अगर ज्ञानवाणी का उदय होएगा तो समझ में नहीं आएगा कि क्या है, वस्तु वस्तु स्वरूप समझ में आएगा।
मगर वो निमित्त
ज्ञानवाणी कर्म का उदय, हाँ हाँ, दो मिनट, ज्ञानवाणी कर्म का उदय चाहे आपके पास किताबें हैं या किताबें नहीं है तो भी ज्ञानवर्णी कर्म का उदय क्या करेगा काम कि उसको उतना ज्ञान नहीं होने देगा, बराबर, ठीक है। तो ज्ञानवर्णी कर्म का उदय आपके पास कितनी किताबें कंट्रोल करता है कि नहीं करता? ज्ञानवर्णी कर्म का कोई भी कार्य आपके बाहर नहीं है, इसके पास ज्ञान आपके साथ बोल सकते हो कि इसके पास किताबें ही नहीं जितने कैसे पढ़ता, ये आप बोल सकते हो, बराबर। हेलो, लेकिन हम उसके निश्चित ज्ञान को थोड़ी नाप रहे हैं। हम तो ये नाप रहे हैं कि उसके ज्ञान में एबिलिटी कितनी है। उसका ज्ञान तो है ना, होती तो पढ़ लेता ना वो, उसके पास ज्ञान तो था ना, राइट। ज्ञान वही कर्म का होता है, वो किताबों का नहीं मिलना उसका अंतराय हो सकता है, वो उसकी उस समय की जो बात होगी सो होगी। लेकिन ज्ञान वही कर्म का काम क्या है कि वह अंतरंग ज्ञान को करता है। मुझे यदि किताब नहीं मिली, ज्ञानवर्णी कर्म के उदय के कारण नहीं है। ठीक है,
आपकी आवाज थोड़ी दोबारा ड्रॉप ज्यादा हो गई
है। देखिए, अब ऐसे ही तो देखिए, ज्ञानवर्णी कर्म है कि नहीं है, है। स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है, परद्रव्य है, और ज्ञान है वो स्वद्रव्य के परद्रव्य, स्वद्रव्य ज्ञान है, मेरा गुण है, मेरी पर्याय है, बराबर। तो वह कर्म ज्ञानवर्णी, वह मेरी पर्याय है, निमित्त है, तो मेरा जो ज्ञान है मैं पूरा नहीं खेल पाता। करेक्ट, ठीक है, यहाँ से बात ठीक हो गई,
बराबर।
हेलो,
जय श्री।
अब जैसे ज्ञान ने अपना
दोबारा थोड़ा ड्रॉप हो जाती है आवाज, क्लियर नहीं, पकड़ में नहीं आता।
हेलो,
हाँ,
जैसे ज्ञानवर्णी कर्म के बाद अपना काम है, अपना क्या काम कि मैं अपना काम ये करता है कि जीव को पूरा ज्ञान नहीं होने देता, ऐसे ही हमने ये ढूंढना चाहा कि हमारे पास क्या ऐसा कोई कर्म है जिसके कारण मुझको पैसा मिलता हो, जिसकी उदय में, जैसे ज्ञानवर्णी के उदय में मुझे ज्ञान कम होता है, राइट। तो ऐसा कौन सा कर्म है जिसके उदय में पैसा मिलता हो? तो हमने देखा कि ऐसा कोई कर्म नहीं है, लेकिन जो साता और असाता वेदनीय कर्म है वो ऐसे ही करता है जैसे ज्ञानवर्णी काम कर रहा था। बाहर किताब हो कि नहीं हो, ज्ञानवर्णी कर्म जानना जानता था कि हाँ, इसकी ज्ञान की योग्यता इतनी खिली हुई है। यदि साता वेदनी का उदय था तो बाहर पैसा हो कि नहीं हो, इसको संतुष्टि रहती थी, अच्छा रहता था, खुश रहता, तो कोई परेशानी नहीं थी इसको। तो बोल दिया गया कि ये पुण्य का उदय इसके है। अब देखो, जो खुश रहता था ना, उसके साथ विद्नी का उदय था, तो देखा गया, कह रहे उसके वो बहुत बड़ा महल भी था, बहुत सारे पैसे थे, तो लोगों ने देखा, कह रहे यार ये तो खुश रहता है, तो जरूर जिसका बड़ा महल होता है, जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, वो खुशी होता है। तो जिसके पुण्योदय होता है वो खुश रहता है, क्यों? क्योंकि उसके बहुत बड़े महल होते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं थी, ऐसा है क्या कि जिसके पास बहुत सारी किताबें होती हैं उसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है कि नहीं?
नहीं,
मैं नाइजीरियन हूँ, मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं, मेरे पास ज्ञान है क्या? नहीं, वो सोचे भी नहीं पढ़ते आती। तो मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत संपत्ति है, इतना अपना परिवार है, सब आज्ञाकारी है, इसलिए मुझे पुण्योदय है, ऐसा नहीं, इसलिए मैं सुखी हूँ, ऐसा नहीं। साता वेदनी के उदय के कारण मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो ये सब पर उपचार आया कि देखो मैं खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ।
हाँ, बराबर, उपचार आया
टाइम इसके असाता का उदय आया। अब क्या बोलेंगे कि देखो भरत चक्रवर्ती रो रहा है, अभागा भरत, क्या कि देखो वहाँ भगवान को केवल ज्ञान ऊपर समक्षरण लगा है और इसको चक्र रखना प्रकट हो गया। जब भगवान की वाणी करेगी तो इसको युद्ध में सामनाम दंड भेद की नीतियां बनानी पड़ेंगी, समक्षरण में नहीं जा सकता। तो भरत चक्रवर्ती अपने आप को क्या बोलते है कि मेरे कैसे असाता, कैसे अंतराय का उदय है। अब आपको चक्र रत्न प्रकट हो तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? पुण्य के उदय में हुआ कि पाप के उदय में? हाँ,
समझ नहीं आया क्या पूछा आपने?
जब चक्रवर्ती प्रकट होता है भरत चक्रवर्ती को, वह पुण्य के उदय में होता है कि पाप के उदय में?
मेरी अंडरस्टैंडिंग में पुण्य के उदय में।
ओके, तो चक्रवर्ती में प्रकट होता है
वो पैसा मिला उसके हिसाब से ही ये हो गया।
हाँ, वो एक उनके साथ होने वाली जो निश्चित घटना है उसके तहत वो प्रकट होता है। दैट्स ऑल, जो होना था वो होता है। अब उसमें जब भरत चक्रवर्ती के पास एक के बाद एक के बाद एक तीन तीन सूचनाएं आती है, सबसे पहली सूचना आती है कि भैया आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, एकदम खुशी का पार नहीं रहता। दूसरा उनके बेटा पैदा हुआ है और एकदम, और तीसरा कि उनके जो घर पर एक चक्र रत्न प्रकट हो गया, अब वो एकदम शांत हो जाते हैं। ये क्या हो गया? और ये फिर बोलते हैं कि माता आपका भरत तो अभागा है, आपके बाकी के बेटे कितने पुण्यवान है कि उनको भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने को मिलेगी और मैं 60,000 साल तक उसके घूमता रहूंगा युद्ध के लिए, चेतन के विषय के लिए।
हाँ।
तो घटना तो एक है, अब उसमें कोई अच्छा महसूस कर सकता है और कोई महसूस करता है कि नहीं भाई ये क्या हो गया। करेक्ट, तो बाहर की परिस्थिति, ये वाली परिस्थितियाँ तो इंडिपेंडेंट है। इसका फर्स्ट रूल है कि अपने टाइम पर उत्पन्न होती है, सेकंड रूल ये अपने ड्यूरेशन तक रहती है। तो आपके पास कुछ भी आया वो अपने टाइम तक रहेगा, आपने एक वॉच भी खरीदी है वो अपने टाइम तक चलती है, फिर वो गिर जाती है, छूट जाती है, टूट जाती है, पुरानी हो जाती है, नई वाली हो जाती है, तो आप उसको एक साइड रख देते हो। करेक्ट। तो पहला वो आपने इतना टाइम ट्राई किया था, वो आपके बुलाने पर नहीं आया, उसको जब आना था तब आया, उसके बाद भी जब तक रहा जब तक उसको रहना था, नॉट दैट यू कंट्रोल इट, वो तभी तक रहा जब तक उसको रहना था। एंड थर्ड, जब उसको जाना था वो बिना बताए गया, यू डिड नॉट डिसाइड दैट इट विल गो लाइक दिस, वो चला गया अपने टाइम पर। उस पे मतलब कुछ भी यू कैन नॉट डिसाइड, यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग अबाउट इट।
बराबर है, वो परद्रव्य है, हम करता ही
उसका आना जाना और रहना, ये उसकी खुद की स्वतंत्र योग्यता है। वो अपने स्वतंत्र काल में अपने स्वतंत्र परिणामों से, मतलब उसके परिणमन से वो उस क्षेत्र पर आता है, उस क्षेत्र पर अपने निश्चित काल तक रहता है और फिर जिस जैसे ही काल पूरा होता है चला जाता है। इस बीच हमारे जब यदि साता का उदय हो तो हम उसमें इष्ट के संयोग की कल्पना कर लेते हैं कि यार मुझे अच्छा चीज मिल गई है, और यदि हमारे अच्छा असाता का उदय हो तो हम उसमें अनिष्ट की कल्पना कर देते हैं। अब जब हमने इष्ट की कल्पना करी और वो अपने काल में गया तो हम रोने लगते हैं कि यार देखो इतनी अच्छी चीज थी चली गई। हमने अनिष्ट की कल्पना करी और वो चला गया तो हम खुशियां मनाने लगते, चलो वो चला गया। तो इट इज ऑल जस्ट एन एक्सीडेंट दैट इज हैपनिंग, वो होता जा रहा है और हम बस उसमें खुशियां मना रहे। मेरा घर है, उस घर के सामने एक मेला लगा, देयर इज अ फेयर, एक अच्छा सा मेला लगा। करेक्ट, बहुत बड़ा, बहुत बड़े बड़े झूले आए हैं, सब कुछ आए हैं। तो मैं मानने लगा देखो यार मैं कितना लकी हूँ, मेरे कारण मेरे घर के सामने वो मेला लगा हुआ है। बट घर के सामने खाली ग्राउंड था, उसमें मेला लगा, व्हाट डू आई डू। और फिर थोड़े दिनों बाद वो मेला चला गया, आपने बुरा मानने लगा, यार बताओ इतना प्यारा मेला लगा था, क्यों जाना था, अभी तो आया था, अभी तो लगा था, क्यों चला गया, शायद मेरे बुरे दिन शुरू हो गए, क्या हो गया ये। कोई रिलेशन नहीं है आपका, आप सिर्फ अपने ही कल्पनाओं में उसमें उठा बटक कर रहे हो। जैसे कि आजकल होता है, आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास किसी कंपनी का स्टॉक है किसी के पास?
नहीं है।
हमने एप्पल में इन्वेस्ट किया, ओके, एप्पल कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया स्टॉक, तो हमारे स्टॉक में हमें कुछ उसकी कीमत है, राइट? तो आज के टाइम पर ये कीमत है, कल के टाइम पर उसकी कीमत घट गई, परसों उसकी कीमत फिर बढ़ गई, यही तो होता रहता है। अभी तक एप्पल मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी थी, अब अमेजोन हो गई। आप भी पढ़ते होंगे इसको कि मार्क जुकरबर्ग ने एक दिन में इतने सारा उसको लॉस हो गया, इतने सारे मिलियन उसका स्टॉक गिर गया, उसका वैल्यूएशन एक दिन में इतना बढ़ गया, एक दिन में ये वाली कंपनी के दो स्टार्टअप जो था ये लोगों ने किया और वो एकदम बिलियनियर बन गए, एक दिन में उसका स्टॉक इतना हो गया। देखते हो, आप नहीं देखते हो, इंडिया में भी रिलायंस कंपनी का इतना घट गया, इतना बढ़ गया, ये सब क्या हो रहा है? कंपनी में क्या बदल रहा है? कंपनी तो वही है, एम्प्लॉयज वही है, वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वो लोग फोन अपना बना रहे हैं एप्पल वाले, ठीक है। क्या स्टॉक मार्केट पर प्योरली मार्केट की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग निकाल रहे हैं, और उसके कारण हर दिन उसका वैल्यूएशन घट रहा है, बढ़ रहा है। अब मैं एक दिन सोचूं कि चलो मैं मिलियनेयर हो गया, दूसरे दिन सोचूं मैं बिलियनेयर हो गया, तीसरे दिन अरे नहीं 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 मुझे यार इतने रुपए का लॉस हो गया, अरे नहीं नहीं मुझे इतने रुपए का और लॉस हो गया। हम क्या कोई गेम खेल रहे हैं? अपने आप वैल्यूएशन बढ़ा रहे हैं, अपने आप घट रहे हैं, हम उसमें बस क्या करते हैं? कुछ ना पैसा हमने देखा है ना कुछ देखा है, जस्ट वी हैव अ नंबर। हमारे पास सिर्फ एक नंबर है कि आज इसकी वैल्यू इतनी है, आज इसकी वैल्यू इतनी हो गई। अब वो बस स्क्रीन पर चलता रहेगा, स्टॉक मार्केट की स्क्रीन पर इतना अप इतना डाउन इतना लॉस इतना ही है,
कुछ ना कुछ।
क्या है आप यहाँ पर बैठे हो, इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आपको कुछ लेना देना नहीं है, स्कोर बोर्ड पर एक विकेट और गिर गया इंडिया का। अरे यार ये हो क्या यार, ये क्यों इसको ऐसे खेलना था क्या क्या? और ऊपर से भी अंपायर में नो बॉल पर आउट दे दिया यार, ये अंपायर में कुछ देखते नहीं है क्या, क्या आउट हो गया, ये क्या हो गया, मतलब नथिंग इज टू बी, वहां कुछ सही नहीं है हमारा करने को। वहां एक स्क्रीन पर स्कोर बोर्ड पर जस्ट कुछ नंबर्स चल रहे हैं कि चलो उसकी 50 हो गई, उसके 100 हो गए, उसका विकेट गिर गया, बट हम यहाँ पर पूरे ऊपर नीचे हो गए। और अब लोग इस बात पर लड़ रहे हैं कि भैया धोनी ने अच्छे से क्यों नहीं खेला। अरे भाई तुम क्यों लड़ रहे हो आपस में, ऑनलाइन ट्रोलिंग कर रहे हो? आप समझ रहे हो जो कुछ हो रहा है वो इंडिया का पाकिस्तान से जीतना या हारना, ये आपके पुण्य के उदय में हो रहा है कि पाप के उदय में हो रहे हैं?
कुछ नहीं,
कुछ नहीं,
कुछ तो होगा। आपकी टीवी में चल रहा है, आपकी टीवी में चल रहा है, तो इंडिया भी आज हारेगी तो आपके पुण्य से हारेगी कि पाप की वजह से? कि भैया
उसके साथ हमारा क्या लेना देना?
एग्जैक्टली लेकिन अरे तो आपकी टीवी में तो चल रहा है ना, आपका कंट्रोल नहीं है क्या उसमें?
वो तो हम चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, नहीं देखना है तो बंद कर देते हैं।
ऐसे ही आपके घर में आने वाली एक एक ईंट, एक एक पैसा, जैसे उस टीवी में क्या हो रहा है उस पर ना आपका पुण्य का उदय ना पाप का उदय है। इट इज जस्ट अ नॉर्मल हैपनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसे ही बाहर की सारी कहानियां है। हाँ उस समय आपके अंदर एक साता विघ्नि नाम के कर्म का उदय चलता रहता है, उस उदय के कारण वो आपको चश्मा पहनाता है। यदि आपकी आंखों में साता विघ्नि का चश्मा लगा फिर आपके घर के सामने दो बैल भी लड़ रहे होंगे, राइट? आपके घर के सामने से एक डॉग भी गुजर रहा होगा, अरे कितना क्यूट डॉग जा रहा है, कितना क्यूट डॉग जा रहा है, राइट? वो चश्मा जब तक लगाए तो सब आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि आपको उसके कारण अच्छा फील हो रहा है, लेकिन नहीं, ये स्वाधीन है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि हमको परद्रव्य के कारण अच्छा या बुरा फील नहीं होता, हमारे कारण होता है, तो आपके अंदर स्वाधीनता आती है। फिर आप अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि नो मैटर व्हाट मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं प्रसन्न रहूंगा। बाहर के संयोग कैसे भी हो वो तो आना जाना लगा रहेगा, बाहर की सारी चीजें ये संयोग अधीन है, ये अपने समय अधीन है। मैं पर का कुछ नहीं करता, पर मेरा कुछ नहीं करता, को दुख दाता कोई ना आन, या हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, राइट? ये सब कुछ मतलब जब हमको ये सब, हमें हमेशा फिर लगता है कि नहीं नहीं हमारे बाहर की चीजें पुण्य पाप की वजह से चल रही, नहीं, पुण्य पाप का उदय आंतरिक मामला है। आप अपने आप की दृष्टि सुधार लो, बाहर का पूरा जगत व्यवस्थित हो जाएगा। आपकी दृष्टि सुधरी नहीं है तो सब कुछ बिगड़ा हुआ है, राइट? बाहर में कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सबसे बड़ा पागल पर है धन का मत। मतलब आज यदि मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, तो कल को उस पर अमेजोन का जो सीईओ वो हंसेगा कि भाई देखो तुम कल तक अमीर थे, आज मेरा स्टॉक हाईएस्ट हो गया। अब वो दोनों फालतू में एकदम खेल खेल में देखकर, अपने आप को देखकर, अच्छा ओ धोनी ने शतक मार दिया, उसकी सेंचुरी हो गई, वो खुश हो रहा है। अरे स्टॉक मार्केट है, 2 मिनट की चांदनी, अब भी क्रैश होगा, क्या करोगे फिर? उसके बढ़ने पर खुश होना और उसके घटने पर दुखी हो जाना, ये तो पागलपन है, क्योंकि उसको तो उठना बढ़ना लगा ही है. राइट तो बाहर से धन आया नहीं आया, कस्टमर आए नहीं आए, ये सब कुछ इन सब से पुण्य का लेना नहीं है. पुण्य स्वाधीन एक चीज है, हम कितना अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल है कि हम अपने आप को परेशान नहीं करेंगे. तो मुनिराज कभी परेशान नहीं करते. तो मुनिराज के आप पता है छठवें गुण स्थान से पाप का उदय ही बंद हो जाता है. जिनमें अशुभ हो पाप का उदय मतलब अशुभ प्रयोग बंद हो जाता है. बाहर में उत्सर्ग आदि तो आते हैं लेकिन उनके उसमें पाप परिणाम नहीं होते, तुम्हें दुखी नहीं होते. दिन अशुभ प्रयोग की परिणति सत्ता सहित विनाशी हो. भगवान मुनिराज ने अशुभ प्रयोग को ही सत्ता के साथ खत्म कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि मेरा सुखी दुखी होना ये स्वाधीन है, ये बाहर के संयोग से नहीं है. होता तो मैं अपना राजपाट छोड़कर जंगल में नहीं आता. होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम. दूर हटो परकृत परिणाम, सहजानंद रहो अभिराम. हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम. स्वामी जी ने लिखा है बहुत सुंदर है, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान. अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान. मन स्वरूप है शुद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान. किंतु आश वश खोया ज्ञान, बना भिकारी निपट अजान. बस आशा का दुख है, हम फालतू में भिकारी बने हुए हैं, कुछ है ही नहीं. जबकि बाहर की चीजों से कुछ लेना देना ही नहीं और हम फालतू में उसका हानि मिल जाती है हमको.
गुरुदेव भी वो ही बोलते ना कि नानो भिखारी ने मोटो भिखारी.
कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन वहीं पर बना रखा है कुछ भी. बात कुछ भी नहीं है, वो लाल सिंह जी भाई बोलते ना, बात कुछ है नहीं, बात बात में बात बन गई है, बात बात में बात बढ़ गई है, कुछ भी नहीं. कुछ है ही नहीं बात हमारी. राइट तो धन का मद, इसके लिए इसको सम्यक्तु का घातक बोला, क्योंकि ये तो इतना बड़ा मिथ्यात्व है जो तुम्हारे अधिकार में नहीं, जो तुम्हारे बुलाने से नहीं आया, जो तुम्हारे टिकाने से नहीं टिकता है, चला जाता है. उसका तुम मद कर रहे हो, तुम पागल हो. ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी हो तुम मत करो, देखो मैंने रोक दी. अरे अपने टाइम टेबल पर आई है, अपने ड्यूरेशन 2 मिनट का स्टॉपेज है, रुकेगी और फिर चली जाएगी. तो अभी रुकने पे हंस रहे हो तो जाने पे रोगे क्या? तो ये धन का मद मिथ्यात्व है, ये पागलपन है. धन यानी कि इसमें सब लेना पूरा, आपके इस परिवार के सारे परिवारी जन, आपके बच्चे हो, पत्नी हो, पति हो, मम्मी पापा दादा दादी, एवरीवन इस धन मद के अंदर रहेंगे. सब कोई बाहर का पूरा सहयोग, आपकी कार, आपकी वॉच, आपके कपड़े, एवरीथिंग, हमारा जो कुछ भी शरीर के बाहर के सहयोग है, ये सब कुछ स्वाधीन है. इसको बुलाने लाने वाला हमारे पास कोई कर्म नहीं है, ये अपने संयोग से अपने काल में उत्पन्न होते हैं. इनमें सुख दुख की कल्पना करना ये हमारा मिथ्यात्व है. ठीक है. अब अगला मद है तप का मद. ठीक है. तप को मद न मद जो प्रभुता को करे न सो निज जाने. मद धारे तो दोष यही तारे, तो यही दोष वसु समकित को मल थाने. तप का मत देखिये, हम पिता भूप पातुल गति सारे हम मत देखते आ रहे हैं. तो स्टार्टिंग के मत तो बाकी हमने कैटेगराइज करे शरीर तक थे. फिर धन का मत आया, वो शरीर के बाहर का था बराबर. अब ये तप का मत और प्रभुता का मत है. अब ये दोनों का सम्मिश्रण है, दोनों का मिश्र है. इसके पास शरीर है और इसके पास आत्मा है. राइट. ये खुद आत्मा है और सामने इसके शरीर है, जिसमें भेद ज्ञान तो जानता नहीं. तो ये शरीर को आत्मा मानता है और ये जानता है कि मुझे सुखी होना है तो मैं तपस्या करूंगा तो सुखी होगा। लेकिन किस लिए सब करता है कि इसको स्वर्ग मिल जाएगा, इसको वरदान मिल जाएगा, इस पर देवता प्रसन्न हो जाएंगे, इसको कुछ और मिल जाएगा। तो तप करता है तो मैं एक तो शरीर के अधीन तप करता है, उसको लगता है कि मैं शरीर को एकदम जितना कष्ट दूंगा ना, जितना भूखा रखूंगा, जितना लंबा उपवास होगा, उतना ज्यादा बड़ा तप का प्रभाव होगा। ऐसे ही किसी ने दस उपवास किए, मजा आ गया उसको, तो राइट, उसमें जितना आप शरीर को तड़पा सकते हो उतना बड़ा उतना ऊंचा तप हो सकता है, करेक्ट। तपस्या तप मतलब क्या होता है, प्रतपन करना, तपस्या करनी, तपस्या करनी। हाँ तो क्या करते हैं हम, कैसे तप करते हैं, कैसे करते हैं हम तप, हम उपवास कर लेते हैं, हम गर्मी पर खड़े हो जाते हैं, नंगे पैर छेंगे, हम ठंड में शायद ज्यादा कपड़े नहीं पहनेंगे, हम ठंड सहन करेंगे, करें तो कोई पहले अलग अलग टाइप के तप होते थे। पहले लोग अपने चारों तरफ अग्नि जला देते थे, आग जला देते थे और बीच में खड़े हो जाते थे और फिर ध्यान करते थे, तो उसकी लपटों को सहन करते हुए ऊपर चढ़े गए और एक पैर के ऊपर हाथ को ऊपर किए हुए जोड़कर खड़े हुए और खड़े बहुत दिनों तक खड़े हुए, जमीन के अंदर गड्ढा खोद दिया, उस गड्ढे के अंदर सिर्फ सिर बाहर है और बस उस गड्ढे पर खड़े होकर जैसे हिल भी नहीं पाए, पूरा बस बॉडी के आकार का गड्ढा खोलकर और फिर खड़े हुए तप कर रहे हैं, करेक्ट। ये सब कुछ ज्यादा में बोलते हैं बाल तप, क्यों, क्योंकि उनकी इंटेंसिक जो मान्यता है वो ये हो जाती है कि हम शरीर को कष्ट दें, शरीर हो गया हमारा शत्रु और शत्रु को हमने दी पनिशमेंट और हमने उसको जितना तपाया, जितना हम परेशान होंगे ना उतना हमको बाद में मीठा मिलेगा। देखो इसका सिंपल सा साइंस ये मानते हैं, मतलब सिंपल लॉजिकल ये है इसका, वो जो जैसा मानते हैं तो ये सोचते हैं जैसे कि हमको बॉडी में लघु शंका या फिर जैसे हमको जो हमारी बॉडी में निहार आदि की आवश्यकता हमको होती है, जैसे वी हैव टू गो टू टॉयलेट, ठीक है, और हमें कोई टॉयलेट नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, हम बहुत देर तक बहुत परेशान होते हैं, करेक्ट, हाँ। मिल जाए मिल जाए मिल जाए, एंड इन द एंड जब टॉयलेट मिलता है तो हम फिर जब जाते तो हमको फिर बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली चलो वी गॉट अ चांस कि हो गया, करेक्ट, ऐसा होता है। सो नाउ उससे कोई ऐसा रूल निकाले कि यार देखो टॉयलेट बहुत देर बाद मिले तो उसके बाद टॉयलेट जाने के बाद बहुत अच्छा लगता है, तुरंत मिल जाते हैं, तुरंत इतना आप जितने मतलब फोल्ड करोगे तो आपको उसके बाद उतना ज्यादा होगा, गॉट इट, पागलपन है, ये पागलपन है, राइट। आप जितनी देर तक होल्ड कर रहे हो उतनी देर तक आप ही जानते हो कि आप कितनी परेशानी में थे। सिमिलरली वो ये सोचते हैं कि यदि हम अभी परेशान हो जाएंगे, अभी हम शरीर को भूखा रखेंगे, स्वर्ग में हमको उतने सारे अच्छे अच्छे खाना खाने को मिलेगा, हम अभी जितना ब्रह्मचर्य से रहेंगे, लिटरली ये वर्ड्स हैं शास्त्रों में उन लोगों के, कि आप यदि अभी ब्रह्मचर्य से रहते हो तो स्वर्ग में आपको अप्सराए मिलती है, आप यदि अभी भूखे रहते हो तो वहां पर भगवान के साथ भोजन करने को मिलता है, मतलब जो अलग अलग उनके जैसे भी वर्णन है सबका, क्रिश्चियनिटी में अलग है दैट यू विल गेट टू ईट विद द लॉर्ड और ये और वो, राइट। तो ये सारी चीजें अभी किसी चीज का यहाँ पर कष्ट उठाना उस चीज के लिए जिसकी श्योरिटी भी नहीं है, आपने भविष्य का देखा तो नहीं कि क्या होगा,
हाँ।
आप तो अभी बस टॉयलेट को होल्ड कर रहे हो, आपको ये थोड़ी पता है टॉयलेट मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिली तो देयर वुड बी अ प्रॉब्लम, करेक्ट। सिमिलरली आपने अभी पर स्टार्ट कर दिया कि हाँ 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 हम ये करेंगे, इन योर थिंकिंग जैसे कि किया उसने, उस स्टेट में किया उसने क्या कि हाँ मैडम वो काल मंत्र कब तक पढ़ूंगा, जब तक यहाँ पर तेल जलेगा, और वो पढ़ता गया थिंकिंग के रमोकार मंत्र पढ़ कर कुछ अच्छा तो होगा, क्या हुआ लेकिन मेंटर बन गया वो, क्या हुआ, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, उसने तप किया कि नहीं किया, बताओ तुम, देखो प्यास का सहन की कि नहीं की,
तो मनुष्य से तिर्यंच गति मिले तो उसको तो
देवगति और नरक गति में तो इसका प्रोविजन ही नहीं है। देवगति और नरक गति में तो आप तप कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट उसका प्रोविजन ही नहीं है। लेकिन मनुष्य और तिरंज गति में ये सब किया जा सकता है। बट ये सब यदि किया जाएगा सम्यक्त्व के बिना तो ये सब पागलपन होगा, बाल तप होगा। इसको बोलते हैं बाल तप। बच्चे जैसी क्रियाएं करते हैं वैसा करना, नाटक नाटक में चलो हम अभी ये कर रहे हैं ये छोड़ रहे हैं इसके बाद हमको क्या, बच्चों से क्या बोला बेटा तुम अभी आप अच्छे से 2 घंटे पढ़ाई करोगे तो हम आपको चॉकलेट देंगे। राइट, वो पढ़ाई कर रहे हैं 2 घंटे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट उनका पढ़ाई करना पढ़ाई करने के लिए नहीं है,
चॉकलेट
के लिए है। ऐसे वो एकदम ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि उनको ब्रह्मचर्य का स्वरूप पता है। वो छुरा को सहन कर रहे हैं, ये नहीं कि उनको भूख से रहित होना है, उनको तो बहुत सारा अच्छा खाना चाहिए। इसलिए ठीक है, तो अब इसमें 2 बातें आएंगी। फर्स्ट थिंग कि जो हमको शरीर से संबंधित कष्ट दिया जाता है अज्ञान के कारण, तो वो सबसे पहले वर्तमान में दुख का कारण होता है। ठीक है, तो आप जब भी कुछ करते हैं क्योंकि शरीर के साथ आपका घनिष्ठ नैमित्तिक संबंध है, तो आप शरीर को आप यदि एक दिन भूखा भी रखते हैं आपको पता पड़ जाता है कितनी वेदना में आ जाते हैं। राइट, तो पहले तो क्या करता है वो कि अपने आप को वर्तमान में दुखी करता है। ठीक है, अपने आप को वर्तमान में फॉर नो रीजन दुखी करता है। सेकेंड, जो शरीर को आपने कष्ट दिया उससे आपको आगामी पुण्य का बंध नहीं होता। जैसे कि मैंने उपवास किया, ये कार्तिकेय स्वामी की गाथा है मुनिराज की, ओके, कार्तिकेय अनुप्रेक्ष ग्रंथ में, मैंने उपवास किया उसके कारण पुण्य का बंध नहीं होगा। उपवास करते समय जो मैंने कार्य किया उन कार्य के कारण पुण्य का बंध होगा। मैंने उपवास किया और मैं सो गया दिन भर, अब सो जाऊंगा तो भूख ही नहीं लगेगी। राइट,
अनुभव जी, यहाँ एक क्वेश्चन है। आपने बोला कि उपवास का पुण्य नहीं लगेगा, उपवास के समय में जो कार्य किया उसका लगेगा, बट कार्य का मतलब यहाँ क्या हुआ? मतलब जो हम जो क्रिया पे करते हैं या जो भाव से जो मतलब
वही वही बता रहा हूँ।
ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी,
उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला कि उपवास किया, ये उनकी मूल गाथा है और ये मुनिराजों के लिए लिखी है उन्होंने, मतलब मुनिराजों को ये बोला है और फिर उसके बाद श्रावकों को लिखा उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो उपवास करते हैं और फिर ये समझते हैं कि चलो आज तो खाने का कोई काम ही नहीं है, आज अपन अपने पुराने काम निपटा लेते हैं, तो उस दिन घर की सफाई करने लगेंगे, अपनी अलमीरा को जमा लेंगे, लेकिन यार आज तो कुछ काम नहीं है, वहां चले जाएंगे। तो बोलते हैं कि उन लोगों का उपवास इतना निरर्थक है कि वे वर्तमान में तो दुखी रहते हैं और आगामी में पाप मानते हैं। ये मूल गाथा है श्रावकों की। तो स्पष्ट निषेध किया कि उपवास के दिन जो ग्रह कार्य करते हैं, उपवास किसने किया था कि जिस स्वरूप के उपवास आत्मा की आराधना करता है, भगवान के पास में भक्ति करे, स्वाध्याय करे, भेद ज्ञान करे, तत्व चिंतन करे, जो भोजन में उपयोग खराब होता था उस उपयोग को बचाकर अपने तत्व विचार में लग जाए, बराबर, ये जो काम करना था इसको छोड़कर जो क्या करते हैं, अरे आज तो हम फ्री हैं, आज तो कुछ भी नहीं करना है, आज फ्री है आज कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलो ये कर लेते हैं। देखा आपने ऐसा, आपके साथ हुआ कभी ऐसा? हम जो उपवास करते हैं बहुत फ्री हो जाते हैं। हेलो हेलो,
हाँ जी हाँ जी,
तो उपवास के समय यदि क्रियाएं शारीरिक सांसारिक हैं तो वह उपवास पाप बंध का कारण होता है, मतलब वह क्योंकि पाप परिणाम है आपके उस समय। तो उपवास आदि का भी जैसे कि अष्टमी चतुर्दशी आदि में जो लोग करते हैं तो उनको तो विधान है कि उनको इतने दिन सामायिक करनी चाहिए, मंदिर में रहना चाहिए, थोड़ी देर स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्रों को सुनना चाहिए, अकेले बैठकर तत्व विचार करना चाहिए। अब हम अकेली उपवास को सोच लें, चलो हम उपवास करेंगे बस और बाकी का काम नहीं करें। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, हम लोगों को जब एग्जाम होते हैं ना तो हम लोगों को अपनी छुट्टियां मिल जाती हैं 10 दिन पहले की, छुट्टियां ठीक है, तो एग्जाम के पहले क्या हो जाती है, 10 दिन की छुट्टियाँ। 10 दिन क्या करना होता है कि स्कूल नहीं जाते बच्चे, ठीक है करेक्ट।
हाँ,
तो
हाँ,
फर्स्ट क्लास में जब मैं था तो मैंने सोच लिया एग्जाम है तो 10 दिन पहले छुट्टी मिलती है, ठीक है। सेकंड क्लास में तो भी पता पड़ा कि एग्जाम के 10 दिन पहले छुट्टी मिल जाती है। तो थर्ड क्लास में मुझे लगने लगा कि भाई देखो क्या होता है, जब भी एग्जाम आता है ना उसके 10 दिन पहले से स्कूल जाना बंद कर दो तो एग्जाम अच्छा हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, एग्जाम आने के 10 दिन पहले स्कूल नहीं जाता हूँ, तो उससे क्या होगा, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे ना?
नहीं
क्यों, मैं स्कूल तो नहीं जा रहा 10 दिन,
वो तो पढ़ने के लिए मिली।
स्कूल नहीं जाना ये काम नहीं है, भोजन नहीं करना ये उपवास नहीं है, इसलिए वो छुट्टियां नहीं है। आपने भोजन शरीर को पनिशमेंट देने के लिए थोड़ी छोड़ा है, आपको स्कूल से पढ़ाई ना करने के लिए थोड़ी निकाला है अभी 10 दिन के लिए। क्रिया तो हो रही है कि स्कूल नहीं जाना है, क्रिया तो हो रही है कि भोजन नहीं करना है, बस भोजन का नहीं करना भूखा रहने के लिए थोड़ी है, स्कूल नहीं जाना है स्कूल नहीं जाने के लिए थोड़ी है, वो तो पढ़ाई के लिए था ना।
हाँ,
आप एक क्रिया कर रहे हो कि स्कूल नहीं जा रहे हो, आप एक क्रिया कर रहे हो कि खाना नहीं खा रहे हो, लेकिन जिसके प्रयोजन से वो क्रिया थी कि पढ़ाई कर लो भाई 10 दिन बाद पेपर है। यार आप वेद ज्ञान कब करोगे, दिन भर तो खाना बनाने में निकल जाता है। आज हमको छुट्टी मिली है, आज हम अच्छे से रहेंगे, आज हम शरीर आदि की क्या भोजन क्या ये हम इन सारे विकल्पों से दूर रहेंगे, कोई घर का काम नहीं आज। तो हम एक काम तो करें कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, और हम दूसरा जो मेन काम है जिसके लिए स्कूल नहीं जा रहे उसको ही उड़ा दे, तो फिर छुट्टी का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं। इससे अच्छा तो स्कूल चले जाते, टीचर कुछ किताबें खोल के बता देती, 2-4 शब्द पढ़ लेते, कुछ काम आता। इससे अच्छा तो भोजन करते, मन लगता मंदिर को शाम को स्वाध्याय में बैठे तो खाना खाना नहीं दिखता, मन लग जाता, आराम से रहते, परिणाम शांत रहते। अब देखो भूखे हो तो परिणामों में इतना खुलता है, और स्वाध्याय का कुछ नाम नहीं, दिव्यांग की कोई बात नहीं, तो किस काम का है ये? ये तप नहीं है, ये सिर्फ तप का मद है, ये पागलपन है, ये सम्यक दृष्टियों को नहीं होता। हम सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, करने के लिए करना मतलब खाना पूर्ति, जस्ट एक फॉर्मेलिटी, चलो कर लेते हैं 10 दिन है, 10 दिन ही था करने के, चलो कर लेते हैं। और देखो आज तो तब कर रहे हैं, आज तो अनंत चतुर्दशी का दिन है, आज तो सभी कर रहे हैं, आज तो करने ही पड़ेगा, ट्रेंड है हमारे यहाँ तो सब करते हैं। मैं अभी गया था जहाँ भी दशरक्षण वगैरह के लिए जाता हूँ, तो वहाँ पर वो पूछते हैं ऐसे पंडित जी आप भोजन लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब सब कोई भी नहीं करता है, अच्छा ऐसा ट्रेंड है। मैं ऐसे पूछता हूँ फिर उनसे, भाई इसमें से किसी की ताकत नहीं हो फिर भी उसको आपके प्रेशर में नहीं करना पड़ रहा हो तो ये तो गलत बात है। अब समाज में सब करेंगे तो परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है ना अपने आप, यार सब कर रहे हैं फिर, अरे तुमने नहीं किया आज, आज तो सबने किया है, आज के दिन तो कर लेते। दिस इज अ पर्सनल थिंग, ये जो कुछ भी हम नियम आदि लेते हैं ये सामाजिक नहीं होते, पर्सनल होते, सब अपनी शक्ति का विचार करके। आपको कितनी देर में आकुलता होने लगती है, आप कितना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो उसको लेकर, क्योंकि यदि उससे ज्यादा करोगे तो जिनागम में निषेध है, शक्ति से अधिक करना जिनागम में निषिद्ध है, शक्ति से कम करना जिनागम में निषिद्ध है, दोनों प्रॉब्लम डाइसी है, दोनों में पापबंध है। शक्ति से कम किया जाए तो वो प्रमाद की कोटि में आता है, शक्ति से ज्यादा किया जाए तो वह अविवेक की कोटि में आता है, और दोनों ही जिनागम में पाप है, पापबंध के कारण है। ठीक है, तो उपवास आदि क्रियाएं सिर्फ क्रियाओं के लिए करना ये हमेशा तप को उत्पन्न करेंगी, आपको पता मैंने ये किया, आपको पता मैंने ये किया, राइट। जैसे कि आजकल इसको एक्स्ट्रा विगेंजा बना दिया गया है, राइट। अभी कोई दीक्षा भी लेता है तो प्रॉपर उसकी मेहंदी लगाई जाती है, और फिर उसका प्रॉपर एक स्टेज होगा, उसको पूरे ज्वेलरी चढ़ाई जाएगी, ये होगा वो होगा, मैं वो सब कुछ देखेगा और फिर दीक्षा लेगा, करेक्ट। ये क्या है, ये उस तप का मद दिखाना है, ये किन शास्त्रों में पूरे इवेंट का, कौन कौन सी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो आपको आइडिया दे रही है, श्वेताम्बरों में भी बहुत होता है, दिगंबरों में भी होने लगा है।
तो वो एक्चुअली वो हाँ वो इट शुडन्ट बी डन ऐसा आप बोलते
हैं। अरे लेकिन वो नहीं होगा तो फिर आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर कैसे प्रभाव में होगी दिगंबर मुद्राक्षण को? स्टेज पे तो बिठाना पड़ेगा ना सबको, सिंदूर वो क्या बोलते हैं माकुर लगाकर और ये लगाकर, तो ये सब तप के मत के प्रकार है और ये एकदम इनसे सीधा दर्शन मोहिनी का तीव्र बंध है जो कि जिनार्दन के मंच से ऐसी नीची क्रियाएं होती हैं प्रचार के नाम पर प्रभावना के नाम पर। सीधा अष्टपाहुर की दर्शन पाहुर में इसको निगोद का कारण बोला है, जिन क्रियाओं को कराता है वह आगामी बंध में ऐसा लगता है आगामी पर्याय में लूला लंगड़ा और गूंगा होता है। तो गूंगा होना मतलब दो इंद्री भी नहीं होना, रसना इंद्री वाले के वचन योग होता है तो एक इंद्री होता है गूंगा मतलब एक इंद्रिय।
मुझे एकदम समझ में नहीं आया कि क्या वो जो दीक्षा लेते वो सब एकदम ड्रेसअप कर कर करते और फिर वो करते उसमें क्या
वो किसी को समझ में नहीं आता, बट उसमें ये है कि दान बहुत इकट्ठा हो जाता है, एक नाम बहुत हो जाता है कि सब इतने लोगों की दीक्षा हो रही है, उनका ये कहना है कि लोगों को संयम की प्रेरणा मिलती है, मिलती भी हो पता नहीं, मिलती भी हो नहीं हो, लोग देखते हो नहीं देखते हो, देखते ही होंगे सब लेते ही होंगे प्रेरणा।
पर ऐसे श्रृंगार करके दीक्षा कहाँ त्याग की भावना दिखती
है? क्रियाएं है ये, उस वैराग्य की क्रियाएं नहीं है, फिर उसकी वैराग्य की क्या हो रही है? जिसको सबको दिखा के वैराग्य करना है उसका वैराग्य कैसा है?
हाँ
वो वैराग्य कहाँ कहलाता है?
वो तो एक इवेंट बन के रह गया ना, आपको प्रदर्शन करना, ये सब इसके तप के मत के अंदर आएगा। जगत को दिखाने के लिए दीक्षा ले, जगत को बताने के लिए शास्त्र को पढ़े, सारे दिखाने के लिए कि हमारी ख्याति हो, तो जब उसका पारणा होगा तो हर जगह होर्डिंग्स लग जाएंगे कि भैया इन लोगों ने इतना पारणा किया है इसका ये है, फिर उनको हमेशा याद रहेगा कि हमने 10 दिन तक ये किया था वहां पर। अच्छा है वो प्रशंसनीय था, लेकिन भैया वो तो एक पारणा था 10 दिन का, आपको पता है आपने क्या क्या किया है? आपने तो महाव्रत मुनि व्रत धार अनंत भार ग्रीवक उपसायो, आपने क्या 10 दिन का उपवास किया? आपने तो ऐसे भयंकर उत्सर्ग सहे जिन पर आपका मरण हो गया और आप ग्रीवक में उत्पन्न हुए हो, ये छोटे मोटे आसन से क्या हो गया आपका? आप किसका मत कर रहे हो? परावर्तन में हमने क्या नहीं किया, कौन सा उपवास नहीं किया, कौन सी क्रिया नहीं करी? पर जो करे पै निजे आत्म ज्ञान बिना, लेकिन वो विनम्रता विनय नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं किया, ये बाहर की क्रिया में अभिमान रहा, ये तप का मद है। तो हम छोटी छोटी क्रियाओं को करके हम बहुत बड़ा अपने आप को मान लेते हैं। तो योगी बाबू जी तो कितना बोलते थे कि आप लोगों ने पूरा, मतलब ऐसा बोलते थे पंडित जी लोगों को कि आप लोगों ने पूरे मार्ग को मलिन कर दिया, आप लोग छोटे छोटे विधान कराते हो, उसमें इंद्र बना देते हो, फिर उनको महंगी महंगी साड़ियाँ महंगे महंगे कपड़े पहनाते हो, सब अपनी ज्वेलरी, और वहाँ विधान तो कहीं और गया, बस लोग ये देखते रहते हैं कौन कितना सजा, और वहाँ जहाँ वितरकता की उपासना होनी थी वहाँ पर वो एक इवेंट बन के रह गया देखने दिखाने का। युगल बाबू जी के प्रवचन है बहुत, आप लोग वितराग देव के सामने ऐसा ऊंचा दिखावा करने के उपक्रम कर रहे हो, ये सही
तो है। वो तो गुरुदेव थे तब पंच कल्याण होता था ना, तो उसमें भी वैसा ही होता था, जो लोग इंद्र इंद्राणी बनते थे वो भी सजावट
इंद्र इंद्राणी बनते थे ऐसा नहीं। आप गुरुदेव श्री के जो जितने वीडियो उपलब्ध है आप उधर पर देखिए लोगों की सादगी कितनी है उस टाइम की, वो जमाना अलग था। अब आप समझिए
पंचकल्याण में कितना हल्ला होता है,
कितना मतलब अभी क्या हो गया, कहीं भी हो गया तो वहाँ पर राजा इंद्र रूठ गए कि उनकी ड्रेसेस अच्छी नहीं आई है, इंद्राणियाँ रूठ गई कि उनको साड़ी अच्छी नहीं मिली है, अब ये सब
कितने वगैरह का अभी कितना प्रेशर वो डालते
हैं। वो तो पहले भी वैसा ही था, वो मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव के जमाने में भी होता था, हम जब बच्चे थे तब हम
देखते तो शायद इतना ऐसा नहीं हो पाता क्या पता, लेकिन अभी तो ये एक दूसरे लेवल पर पहुंच गए, क्योंकि इस टाइम ज्वेलरी के ऑप्शन भी नहीं होते थे, अब तो हजार है जो कुछ भी है, बात यह है कि ये सारी चीजें जो भी धर्म के निमित्त से भी हम मान को ग्रहण करते हैं, कुछ हम त्याग के निमित्त से हम मान को ग्रहण करते हैं, शरीर को कष्ट देने के निमित्त से जो हम मान को ग्रहण करते हैं, ये तत्मद है, ये हमारे कल्याण में कभी नहीं बनते, मिथ्या दृष्टियों को होता है, थोड़े टाइम तक ठीक है, बाद में ये दुख का ही कारण है। ठीक है, ठीक है। अब एक मत हमारा बच्चा प्रभुता का मत, हम उसकी बात करके नेक्स्ट क्लास में आप ही करेंगे,
प्रभुता का नेक्स्ट टाइम ले लेंगे अभी,
नेक्स्ट टाइम लेकर उस पर हम उस पर चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, ओके, फिर मैं छुट्टी करते हैं। निति निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए चिन्मयी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए चिन्मयी माँ को वंदना शत बार है।